ये है पॉडकास्ट आशा की किरण, जहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ, उम्मीदें, आशाएं, उमंग, उत्साह, सकारात्मक सोच। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके जीवन में उम्मीदों का एक नया सूर्योदय आशा की किरण के साथ। इसे लेकर आऊंगी मैं किरण। जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सोचेंगे बधाई किस बात की? मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हमारा 25वां भाग श्रीमद् भगवद गीता के पठन का आज है। तो फिर बड़ी खुशी की बात है, हमारे इतने श्रोता इतने समय तक हमारे साथ में जुड़े रहे और लगातार मुझे बताते रहे कि किस तरह से उनको ये कार्यक्रम चाहिए, किस तरह का प्रयास लग रहा है। इस बारे में दूर दूर से संदेश यहाँ पर आए, ध्वनि संदेश मिले और उत्साहवर्धन होता रहा, दिशा मिलती रही। और आज देखिए ना, 25वां एपिसोड आ गया और हम दूसरा जो अध्याय है उसका श्लोक संख्या 59 पर पहुंच चुके हैं। तो पहले आज हम श्लोक संख्या 59 पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी विवेचना विस्तृत है, उसको ध्यान से हम सुनेंगे। उसके बाद रवि जैन साहब का लिखा हुआ, उनका गाए हुई पंक्तियाँ, उस पूरे जो श्लोक का अर्थ है उसको अपने अंदर समेट लेती है, उसको सुनेंगे। साथ ही इस दौरान मुझे कुछ खास मैसेजेस मिले हैं 25वें एपिसोड के लिए, उसको भी शामिल करेंगे। उसमें हम कुछ पुराने संदेश भी लेंगे, जिसमें कुछ भजन ऐसे गा करके हमारे श्रोताओं ने हमको भेजे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। तो बाद में हम इन संदेशों को सुनेंगे, पहले हम श्लोक संख्या 59 की समीक्षा, श्लोक उसकी विवेचना सुन लेते हैं, तत्पश्चात संदेश आएंगे एक के बाद एक। और मैं बहुत खुश हूँ आज, और आप सभी का सहयोग, साथ चाहिए, संबल चाहिए कि ये जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहे। अपनी आखिरी जो मंजिल है, अंतिम मंजिल तक आपका सहयोग चाहिए, और उसके लिए ध्वनि संदेश, गीता महात्म्य के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो ज़रूर मुझे रिकॉर्ड करके संदेश के रूप में भेजते रहिए और सुनते रहिए। ये ईश्वर ने हमने जो अवसर दिया है, मैं उनको हमसे क्या करवाना है वो स्वयं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। कभी आज के 3 महीने पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। आपको नियति और भाग्य किधर ले जाता है कोई नहीं जानता, और यदि हम भगवान के बनाए बहाव में बह रहे हों तो उससे अति सुंदर बात क्या हो सकती है, क्योंकि वो हमें जहाँ ले जाएंगे वो जगह तो हमारी परिकल्पना से भी परे होगी, बहुत सुंदर और परम आनंद की स्थिति होगी। तो इसी विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहें बिना फल की इच्छा किए बिना, ठीक है? तो पहले सुनते हैं श्लोक संख्या 59। विवेचनाकार हैं जयदयाल गोविंद का। पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता दिखलाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जनम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। कृष्णा
यहाँ निराहारस्य विशेषण के सहित देहिनः पद किसका वाचक है? संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उसे निराहार कहते हैं, परंतु यहाँ निराहारस्य पद का प्रयोग उस अर्थ में नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ विषयाः पद में बहुवचन का प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने की बात कही गई है। भोजन के त्याग से तो केवल जिह्वा इंद्रिय के विषय की ही निवृत्ति होती है, शब्द स्पर्श रूप और गंध की निवृत्ति नहीं होती। अतः यह समझना चाहिए कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देहाभिमानी मनुष्य का वाचक यहाँ निराहारस्य विशेषण के सहित देहिनः पद है। ऐसे मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अंतःकरण को स्थिर नहीं होने देती। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात ठीक समझ में आ सकती है। रोग या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय का या अधिक विषयों का त्याग कर देता है। वह जैसे जब किसी विषय का परित्याग कर देता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग करने पर समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु वह निवृत्ति हट भय या अन्य किसी कारण से आसक्ति रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तुतः आसक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। दंभी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी समय जब बाहर से दसों इंद्रियों के शब्द आदि विषयों का परित्याग कर देता है तब ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आसक्ति रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, अतः उसकी आसक्ति पूर्ववत बनी रहती है। भौतिक साधनों की कामना वाला मनुष्य अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में ही समाधि अवस्था में दसों इंद्रियों के विषयों का ऊपर से भी त्याग कर देता है और मन से भी उनका चिंतन नहीं करता, तो भी उन भोगों में उसकी आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस प्रकार स्वरूप से विषयों का परित्याग कर देने पर विषय तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। यहाँ रस का अर्थ आस्वादन अथवा मन के द्वारा उपभोग मानकर उसका रस निवृत्त नहीं होता। इस वाक्य का अर्थ यदि यह मान लिया जाए कि ऐसा पुरुष स्वरूप से विषयों का त्यागी होकर भी मन से उनकी उपभोग का आनंद लेता रहता है तो क्या आपत्ति है? उपर्युक्त वाक्य का ऐसा अर्थ लिया तो जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्ति होने पर ही होता है, अतः रस का अर्थ आसक्ति लेने से यह बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व हट विवेक एवं विचार के द्वारा भी रोका जा सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तो उसके मूल आसक्ति का भी नाश हो जाता है, और इसी में परमात्मा के साक्षात्कार की चरितार्थता है। विषयों का मन से उपभोग हटाने में नहीं, अतः रस का अर्थ जो ऊपर किया है वही ठीक है। अस्य पद किसका वाचक है और इसकी आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है, इस कथन का क्या भाव है? अस्य पद यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्थित प्रज्ञ योगी का वाचक है, तथा उपर्युक्त कथन से यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस स्थित प्रज्ञ योगी को परमानंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी सांसारिक पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है। उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्यों को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुख की प्रतीति हो रही है, इसी कारण उनकी उन भोगों में आसक्ति है, पर वास्तव में भोगों में सुख का लेश भी नहीं है। उनमें जो कुछ सुख प्रतीत हो रहा है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश का आभास मात्र ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्रों में जिस प्रकार प्रकाश की प्रतीति होती है, वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है, और सूर्य के उदय हो जाने पर उसका प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सांसारिक पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। अतः जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको इन भोगों में सुख की प्रतीति ही नहीं होती और न उनमें उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति ही रहती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है, फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कौन करे। इसीलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति के सर्वथा निवृत्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार आसक्ति न रहने के कारण स्थित प्रज्ञ के संयम में केवल विषयों की ही निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आसक्ति का भी सर्वथा अभाव हो जाता है, यह उसकी विशेषता है।
भोजन को तो छोड़ दे पर नहीं भूले स्वाद, अर्जुन ऐसा त्याग है केवल मिथ्यावाद, केवल मिथ्यावाद। इंद्रियों को हठ पूर्वक रोके, विषयों से मन को न हटाए, रखे व्रत उपवास परंतु न लालसा छूटे न लोभ ही जाए, मन में कुछ आचरण में कुछ है, चरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए, मन में कुछ आचरण में कुछ है, दोनों का नहीं मेल मिलाए, ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी गंभीर कहाए, ऐसा मूढ़मति अज्ञानी मिथ्याचारी दम ही कहाए।
तो साथियों, अब समय है ध्वनि संदेशों का, यानी कि 25वें एपिसोड का जो विशेष हमारा आज का उत्सव है, वो इन ध्वनि संदेशों के रूप में हम मनाएंगे। सबसे पहले वो संदेश जो मुझे 20-25 दिन पहले मिला था, लेकिन उसको मैंने बचा के रखा हुआ था कि ये विशेष व्यक्ति का मैसेज विशेष एपिसोड में ही जाएगा। ये है मेरी माँ का मैसेज, उन्होंने मुझे भेजा है, तो उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे इसे भेजा है, और सबसे पहले उन्हीं के आशीर्वाद से इसको शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरी सासू माँ की बात, जो ज़्यादा डिजिटल चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती हैं और आज भी टेलीफोन से ही बात करना पसंद करती हैं, उन्होंने ये कहा है कि यो गीता भणवा को काम तो घणो होगी दो। तो दोनों माओं के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं ध्वनि संदेशों का ये सिलसिला।
प्रिय किरण बेटा, खूब खुश रहो। आपने जो ये गीता के अध्याय का जो शुरू किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। आप हर कार्य को जिसको अपने हाथ में लेते हो, दिल जान से करते हो, आप ऑलराउंडर हो, हर काम में, हर क्षेत्र में आगे हो। हमें तुम्हें गर्व है, तुम पर गर्व है बेटा, कि कैसी कैसी नई नई चीज़ें निकाल के हमारे सामने सबको बताती हो। खूब खुश रहो, मस्त रहो, ऐसे ही नए नए प्रयोग करती रहो, जिससे सब लोग सुनते रहे। थैंक यू बेटा।
तो साथियों, माँ के संदेशों के बाद आ जाते हैं बच्चों के भेजे हुए संदेशों पर। ये बड़े ख़ास संदेश हैं और बहुत उम्मीद जगाते हैं और गदगद कर देते हैं मन के भीतर तक। यशिता शर्मा की आवाज़ और प्रणव चौहान की आवाज़ों में ये ध्वनि संदेश अमूल्य।
नमस्ते सबको, मेरा नाम प्रणव चौहान है, मैं माउंट आबू से बोल रहा हूँ, मेरी उम्र 10 साल है। नमस्ते आचार्य मैम, आपके द्वारा चलाया गया आशा की किरण प्रोग्राम के एपिसोड्स मैं रोज़ सुनता हूँ। मेरे दादाजी, मेरे दादी जी और मेरे सारे दोस्त मिलकर चाय नाश्ता करते रहते हैं और आपका प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं। मेरे दादाजी तथा दादी जी को आपके द्वारा सुनाए गए गीता के श्लोक बहुत पसंद आते हैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर आपके पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते हैं। हमें आपका आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा और वह कोरोना वॉरियर नर्स दीदी समेत सारे कोरोना वॉरियर्स जो है उनके नाम मेरा एक पैगाम, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमने आपसे भी सीखा है कि अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उससे डरेगी नहीं, बल्कि आपकी तरह उससे लड़ेंगे और उसे हराएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
जैसे कृष्णा, मैं यशिता शर्मा क्लास फर्स्ट में हूँ। मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कृष्णा किरण आंटी, मैं मम्मी के साथ गीता भी सुनती हूँ, मम्मी बताती है। श्री कृष्णा बहुत बड़े गॉड है
जी,
जिन्होंने अच्छी अच्छी सत्ता दी। श्री कृष्णा गोविंद, श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णा 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 श्री हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बाय बाय।
अगली संदेश दो भजन हैं गीता महात्म्य को बताते हुए। पहला राजसमंद कांकरोली से भारती आचार्य का और दूसरा है रायला भीलवाड़ा से श्रीमती दुर्गा शर्मा का। दोनों को भजन गाने का बहुत शौक है और भक्ति और अध्यात्म की तरफ उनकी रुचि है, तो आइए पहले दोनों के संदेश सुन लेते हैं।
जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जब शोक मोह से गिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते। जब शोक मौज से गिर जाते तब गीता हृदय वचन लाते। कल्याण खजाना भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। हरि प्रेम लबालब भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में।
गोविंद माने गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। परमेश्वर मारी नैया पार लगाओ मारा श्याम। दीन प्रभु के हाथ में बागडोर पकड़ाई रथ हाकने लाग्या हरी अर्जुन यूं बतलाई। केशव जी रत्न सेना बीच लगाओ मारा श्याम। रणभूमि के बीच में उपजो कुटुंब सने शस्त्र हाथ सु छूट गया तर तर का पैदे। केशव जी मासू क्यों थे युद्ध कराओ मारा श्याम। बाणा की वो चार सू खप जासी सब वीर कुटुंब आपनो है सभी किस विद छोड़ू तीर। माधव जी मारी ममता मोह छुड़ाओ मारा श्याम। रथ के पीछे बैठ गया तजा धनुषुरवान शरणागत अर्जुन हुआ प्रभु करो कल्याण। केशव जी मारा हित की बात सुनाओ मारा श्याम। गोविंद माने गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। मैं शरणागत शिष्य हूँ ये गुरुदेव हमार करने गज जानू नहीं धर्म अधर्म विचार। केशव जी दिल मारा दिल की जलन मिटाओ मारा श्याम। मैं गोविंद माने गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम। जगत गुरु श्री कृष्ण जी सबका प्राण आधार मगसर सुद एकादशी प्रगटा गीता ज्ञान। केशव जी माने यो अमृत पिलाओ मारा श्याम। गोविंद माने गीता ज्ञान सुनाओ मारा श्याम।
और अब साथियों आज के लिए खास तौर पर लिखी हुई पंक्तियाँ कवि श्री राम गोपाल आचार्य जी ने हमको भेजी है, उनकी लिखी हुई ये पंक्तियाँ उनके संदेश के साथ आइए सुनते हैं उन्हें धन्यवाद कहते हुए।
हे योगेश्वर कृष्ण फिर से धरती पर आना होगा। हे योगेश्वर कृष्ण फिर से धरती पर आना होगा। विराट रूप दिखलाकर निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाना होगा। धर्म संकट के मझधार में पड़ा धनंजय गीता ज्ञान सुनाना होगा। अरे धर्म संकट के मझधार में पड़ा धनंजय गीता ज्ञान सुनाना होगा। दुर्योधन दुशासन के हाथों सुरक्षित कहाँ है नारी। पग पग पर भेष बदल कर घूम रहे व्यभिचारी। और पग पग पर भेष बदल कर घूम रहे व्यभिचारी। कपटी शकुनी के पासों से जग को तुम्हें बचाना होगा। कपटी शकुनी के पासों से जग को तुम्हें बचाना होगा। आशा की किरण ने गीता ज्ञान हम तक पहुंचाया। अरे आशा की किरण ने गीता ज्ञान हम तक पहुंचाया। जैसे भटके हुए राही को उष्णता में दी हो शीतल छाया। जैसे भटके हुए राही को उष्णता में दी हो शीतल छाया। हे योगेश्वर कृष्ण फिर से धरती पर आना होगा। विराट रूप दिखला कर निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाना होगा। जय श्री कृष्ण।
और अब अंत में इस प्रोग्राम के शुरुआती दिनों में जब मैं इसकी कल्पना कर रही थी, परिकल्पना चल रही थी, प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी,
तब से उनसे जुड़ी हुई हूँ और वो लगातार तब से मेरे साथ बनी हुई है। प्रचार प्रसार का विभाग वो संभालती हैं। यह है मेरी बहन जया दादी जो इंदौर में रहती हैं, वो मेरा निरंतर मुझे फीडबैक देती हैं और बताती हैं कि क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ आइए सुनते हैं उनके भेजे ये मैसेज। जय श्री कृष्ण किरण दी, आज का जो 25th एपिसोड है हमारे आशा की किरण पॉडकास्ट का, उसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। एक्चुअली आशा की किरण में जो गीता का ज्ञान का जो आप पठन कर रहे हैं, उससे हमें दो चीज़ों में फ़ायदा हुआ। एक तो हमारी जनरल नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसका अर्थ हम कुछ और समझते थे और जब इसे सुना तो पता लगा कि इसका वाकई में मीनिंग है क्या। जैसे उदाहरण के तौर पर केशव का अर्थ क्या होता है, इसको यदि हम सर्च करते हैं गूगल पे तो बताता है सुंदर केशव वाला, लेकिन जब हमने आपके इस विवेचना को सुना तो पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके ईश्वर हैं वो केशव है। इसी तरीके से एक और शब्द है ऋषिकेश, उसे सर्च करो तो बताते हैं कि हिंदुओं का एक पवित्र शहर, लेकिन वाकई में इसका अर्थ है कि जिसके अधीन सारी इंद्रियां हैं, यानी कि भगवान कृष्ण। तो ये कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनका कि अर्थ हमें पता लगा, जैसे पांचजन्य क्या चीज़ है, धनंजय, सबके अर्थ हमें पता लगे। तो एक तो सही जानकारी हमें प्राप्त हुई और दूसरी बात यह है कि इसे हमें अपने जीवन में उतारने का मौका भी मिला, क्योंकि समय ही ऐसा था, अभी ये कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है तो उसमें वैसे ही सभी अशांत थे, तो इसको सुनने के बाद काफ़ी सुकून मिला। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी उसमें थी, आपने बताया था कि निष्काम भाव से अगर हम कर्म करते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक क्षण भी नहीं लगेगा आपको मोक्ष प्राप्त होने में। तो कितने सुंदर तरीके से, कितने सरल तरीके से हमें हमारा सनातन धर्म इस चीज़ को प्रदान करता है कि हम आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि हम निष्काम भाव से अपना काम करें, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, कोई भी हो, सभी को इस चीज़ की सुविधा है कि आप निष्काम भाव से कोई भी काम करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कई तरह की विवेचनाएँ बड़ी अच्छी लगी और हम कोशिश करेंगे कि उसको अपने जीवन में उतारेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और हम सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैं आशा करती हूँ कि हमारा ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा आपके साथ ही। जय श्री कृष्णा, थैंक यू। आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने का तरीका बहुत ही सुंदर है, साथ ही पार्श्व ध्वनि में शंख की आवाज़, सुंदर सुंदर भजनों की कुछ कुछ पंक्तियाँ इसे एक तरह से बहुत सुंदर बना देती है और एक चित्र उपस्थित कर देती है। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगी कि आशा की किरण हमारे सूर्योदय का एक हिस्सा बन चुका है। तो आप सभी का सुंदर सुंदर मैसेज, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बारीकी से आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आप सभी साथ रहेंगे तो इसी तरह हमारा कारवां, हमारा सफ़र, हमारा समूह सकारात्मक दिशा की ओर चलता रहेगा। आशा की किरण की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्णा। ये है पॉडकास्ट आशा की किरण, जहाँ पर आपको मिलेगी ढेर सारी खुशियाँ, उम्मीदें, आशाएं, उमंग, उत्साह, सकारात्मक सोच। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके जीवन में उम्मीदों का एक नया सूर्योदय आशा की किरण के साथ। इसे लेकर आऊंगी मैं किरण।